तेजः क्षमाद्रिति शौचमद्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीमभिजातस्य भारत। तेज अर्थात प्रभाव, क्षमा धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। व्याख्या, तेज है महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण मनुष्य भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहां तेजक कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु यह क्रोध रूप दोष का तेज है। साधक में देवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आते हैं, अर्थात उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही सद्भाव पूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। यही उन देवी संपत्ति वालों का तेज है, प्रभाव है, क्षमा। बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना क्षमा है। क्षमा और अक्रोध में थोड़ा अंतर है। क्षमा में जिसने अपराध किया है उस पर विशेषता से यह दृष्टि रहती है कि उसको कभी किसी प्रकार का दंड न हो, और अक्रोध में अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारे में क्रोध न हो, जलन न हो, किसी प्रकार की हलचल न हो। यह क्षमा मोह ममता भय और स्वार्थ को लेकर भी की जा सकती है। जैसे पुत्र के अपराध कर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह ममता को लेकर होने से शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते तो यह क्षमा भय को लेकर है। हमारी धन संपत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर आता है तो वो हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें बुरा भी लगता है, तो भी स्वार्थ हानि के भय से हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते। तो यह क्षमा स्वार्थ को लेकर है, पर ऐसी क्षमा वास्तविक नहीं होती। वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने को यहां और परलोक में किसी प्रकार का दंड न मिले ऐसा भाव रखा जाए। क्षमा मांगना भी दो रीति से होता है। पहला, हमने किसी का अपकार किया तो उसका दंड हमें न मिले, इस भय से भी क्षमा मांगी जाती है, परंतु इस क्षमा में स्वार्थ का भाव रहने से ये ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं है। हमसे किसी का अपराध हुआ तो अब यहां से अब आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर किसी के साथ भी नहीं करूंगा, इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वह अपने सुधार की दृष्टि को लेकर होती है, और ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। मनुष्य क्षमा को अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे। यदि मनुष्य अपने लिए किसी से किसी प्रकार के सुख की आशा न रखे और अपना अपकार करने वाले का बुरा न चाहे तो उसमें क्षमा भाव प्रकट हो जाता है। धृति, किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति है। धृति का अर्थ धैर्य होता है। धृत्याया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः, 18वें अध्याय का 33वां श्लोक। वृत्तियां सात्विक होती है तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियां राजसी तामसी होती है तो धैर्य वैसा नहीं रहता। जैसे बद्री नारायण के रास्ते पर चलने वाले के लिए कभी गर्मी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएं आती हैं, और कभी ठंडक, उतराई आदि अनुकूलता भी आती है, पर चलने वाले को उन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत हमें तो बद्री नारायण पहुंचना है, इस उद्देश्य से धैर्य और तत्परता पूर्वक चलते रहना है। ऐसे ही साधक को अच्छी मंदी वृत्तियां और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर देखना ही नहीं चाहिए, इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता। ठीक कहा है, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। शौचम, बाह्य शुद्धि एवं अंतःशुद्धि का नाम शौचम है। यहां इस प्रकरण में शौचम पद से बाह्य शुद्धि लेनी चाहिए, क्योंकि अंतःशुद्धि पहले श्लोक में सत्व संशुद्धि के अंतर्गत बता दी गई है। परमात्मा का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ध्यान रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि स्वतः होती है, और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि उसको सुहाती नहीं है। इस पर पतंजलि महाराज ने कहा है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग है, अर्थात शौच से साधक की अपनी शरीर से घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता रहता है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से सारे शरीर ऐसी इसी तरह से अपवित्र है इसका बोध होता है। इस बोध से दूसरे शरीरों के प्रति आकर्षण नहीं होता है, अर्थात दूसरे शरीरों से सुख रहने की इच्छा मिट जाती है। बाह्य शुद्धि चार प्रकार से होती है, शारीरिक, वाचिक, कौटुंबिक और आर्थिक। पहला, शारीरिक शुद्धि, प्रमाद, आलस्य, आराम तलबी, स्वाद शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है, और इनके विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मिट्टी आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है। दूसरा, वाचिक शुद्धि, झूठ बोलने, कड़वा बोलने, वृथा बकवाद करने, निंदा करने, चुगली करने आदि से वाणी अशुद्ध होती है। इन दोषों से रहित होकर सत्य प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना और अनावश्यक बात न करना यह वाणी की शुद्धि है। आवश्यक वाणी वो होती है जिससे दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती है और देश ग्राम मोहल्ले परिवार कुटुंब आदि सबका हित होता है। तीसरा कौटुंबिक शुद्धि, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना, कुटुंबियों का हम पर जो न्यायुक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना, कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न करके सबका समान रूप से हित करना, यह कौटुंबिक शुद्धि है। चौथा आर्थिक शुद्धि, न्यायुक्त सत्यता पूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति अरक्षित अभावग्रस्त दरिद्री रोगी अकाल पीड़ित भूखे आदि आवश्यकता वालों को देने से एवं गौ स्त्री ब्राह्मणों की रक्षा में लगाने से द्रव्य की शुद्धि होती है। त्यागी बैरागी तपस्वी संत महापुरुषों की सेवा में लगाने से एवं सदग्रंथों को सरल भाषा में छपवाकर कम मूल्य में देने से तथा उनका लोगों में प्रचार करने से धन की महान शुद्धि हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने पर अपनी शुद्धि हो जाती है, स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर वाणी कुटुंब धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से वहां का स्थान वायुमंडल आदि भी शुद्ध हो जाते हैं। बाह्य शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखने से शरीर की वास्तविकता अनुभव में आ जाती है, जिससे शरीर से अहंता ममता छोड़ने में सहायता मिलती है। इस प्रकार ये साधन भी परमात्मा की प्राप्ति में निमित्त बनता है। अद्रोह, बिना कारण अनिष्ट करने वालों के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना न होना अद्रोह है। क्रोध और द्रोह में अंतर है। अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति तत्काल जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम तो क्रोध है, और क्रोध का जो भीतरी भाव बैठ जाता है अर्थात मौका मिलने पर उसका अनिष्ट करने की जो भावना बैठती है उसका नाम बैर भाव है, वो बैर भाव का नाम द्रोह है। साधारण व्यक्तियों का कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेष की एक गांठ बन जाती है कि मौका पड़ने पर मैं इसका बदला ले ही लूंगा। किंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है उस साधक का कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति बदला लेने की भावना पैदा ही नहीं होती। कारण कि कर्मयोग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है, ज्ञान योग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है, और भक्ति योग का साधक सब में अपने इष्ट भगवान को समझता है। अतः किसी के प्रति कैसे द्रोह कर सकता है। निज प्रभुमय देखई जगत कैसन करई विरोध नाति मानिता। एक मान्यता होती है और एक अति मान्यता होती है। सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है, और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना भी चाहते हैं उनसे भी अपना मान आदर सत्कार चाहना अति मान्यता है। इन मान्यता और अति मान्यता का न होना नाति मान्यता है। स्थूल दृष्टि से मान्यता के दो भेद होते हैं, पहला सांसारिक मान्यता और दूसरा पारमार्थिक मान्यता। सांसारिक मान्यता बताते हैं धन विद्या गुण बुद्धि योग्यता अधिकार पद वर्ण आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं साधारण मनुष्य की तरह थोड़ा ही हूं, मेरा कितने ही लोग आदर सत्कार करते हैं। वे आदर करते हैं तो यह ठीक ही करते हैं क्योंकि मैं आदर पाने योग्य हूं। इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है वह सांसारिक मान्यता होती है। दूसरा पारमार्थिक मान्यता, प्रारंभिक साधन काल में जब अपने में कुछ देवी संपत्ति प्रकट होने लगती है तब साधक को दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता दिखती है, साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला साधक मानकर उसका विशेष आदर करने लगते हैं और साथ ही साथ ये साधन करने वाले हैं अच्छे सज्जन हैं ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधक को अपने में विशेषता मालूम देती है पर वास्तव में यह विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण दिखती है। यह विशेषता दिखना पारमार्थिक मान्यता है। जब तक अपने में व्यक्तित्व रहता है तभी तक अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखाई देती है, परंतु जो जो व्यक्तित्व मिटता चला जाता है त्यों ही त्यों साधक का दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है। अंत में इन सभी मान्यताओं का अभाव होकर साधक में देवी संपत्ति का गुण नाति मान्यता प्रकट हो जाती है। देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको पूर्णतया जागृत करने का उद्देश्य तो साधक का होना ही चाहिए। हां प्रकृति की भिन्नता से अर्थात स्वभावों के अलग अलग होने से किसी में किसी गुण की कमी तो किसी में किसी गुण की कमी रह सकती है, परंतु वह कमी साधक के मन में खटकती रहती है और वह प्रभु का आश्रय लेकर अपने साधन को तत्परता से करता रहता है, अतः भगवत कृपा से वह कमी मिटती चली जाती है। कमी ज्यों ज्यों मिटती जाती है त्यों त्यों उत्साह और उस कमी के उत्तरोत्तर मिटने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इससे दुर्गुण दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार अर्थात देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन ये सभी देवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये देवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक इन गुणों को अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है। प्रत्युत गुणों के आने में वह भगवान की कृपा मानता है। कभी ख्याल करने पर साधक के मन में ऐसा विचार होता है कि मुझमें पहले तो ऐसी वृत्तियां नहीं थी, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहां से आ गए? तो ये सब भगवान की कृपा से आए हैं। ऐसा अनुभव होने से उस साधक को देवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। साधक को देवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानने चाहिए क्योंकि यह देव माने परमात्मा की संपत्ति है, व्यक्तिगत किसी की नहीं। यदि व्यक्तिगत होती तो यह अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति में नहीं रहती। इसको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है। अभिमान आसुरी संपत्ति का मुख्य लक्षण है। अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। यदि दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति पैदा हो जाए तो फिर आसुरी संपत्ति कभी मिटेगी नहीं, परंतु देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कभी पैदा ही नहीं होती, प्रत्युत देवी संपत्ति के गुणों के साथ साथ आसुरी संपत्ति के जो अवगुण रहते हैं उनसे ही गुणों का अभिमान पैदा होता है। अर्थात साधन के साथ साथ कुछ असाधन रहने से अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं। जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान होता है तो उसके मूल में वह सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्य का अभिमान आता है। तात्पर्य यह है कि देवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। सर्वथा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। यहां देवी संपत्ति कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान की संपत्ति है, अतः भगवान का संबंध होने से, उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्त में यह स्वाभाविक ही आती। जैसे शबरी के प्रसंग में राम जी ने कहा, नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म मन माही, इत्यादि नवदा भक्ति कहने के बाद अंत में भगवान ने ये कहा, नवमऊ एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मनुष्य देवता भूत पिशाच पशु पक्षी नारकीय जीव कीट पतंग लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी है, उन सब में अपनी अपनी योनि के अनुसार मिले हुए शरीरों के रुग्ण एवं जीर्ण हो जाने पर भी मैं जीता रहूं, मेरे प्राण बने रहें, यह इच्छा बनी रहती है। श्रीमद् भागवत में कहा है, यह जीर्यत्यपि देहेस्मिन् जीवितासा बलीयसी। इस इच्छा का होना ही आसुरी संपत्ति है। त्यागी बैरागी साधक में भी प्राणों के बने रहने की इच्छा रहती है, परंतु उसमें प्राण पोषण बुद्धि इंद्रिय लोलुपता नहीं रहती, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा का होता है, न कि शरीर और संसार का। जब साधक भक्त का भगवान में प्रेम हो जाता है तब उसको भगवान प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। प्राणों का मोह न रहने से उसके प्राणों का आधार केवल भगवान हो जाते हैं, इसलिए वह भगवान को प्राणनाथ प्राणेश्वर प्राणप्रिय आदि संबोधनों से पुकारता है। भगवान का वियोग न सहने के कारण उसके प्राण भी छूट सकते हैं, कारण कि मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी बढ़कर मानता है उसके लिए यदि प्राणों का त्याग करना पड़े तो वह सहर्ष प्राणों का त्याग कर देता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को प्राणों से भी बढ़कर मानती है तो उसका प्राण शरीर वस्तु व्यक्ति आदि में मोह नहीं रहता है। इसीलिए पति के मरने पर वह उसके वियोग में प्रसन्नता पूर्वक सती भी हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि जब केवल भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है तो फिर प्राणों का मोह नहीं रहता। प्राणों का मोह न रहने से आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है और देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। इसी बात का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार किया है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई।